गोधरा में ट्रेन जलाने के 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। 59 राम भक्त जिसने 27 महिला 22 पुरुष 10 बच्चे जिंदा जलाकर मार डाले गए थे, आखिर एक एक कर कैसे छूट रहते ये जिहादी। आइए पहले थोड़ा सच बता देते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मैसेज, राम भक्तों को जलाकर मारने वाले जिहादी मानसिकता के मुसलमान किसी दूसरे देश से नहीं आए थे, बल्कि इस देश के गुजरात प्रांत के गोधरा के निवासी हैं। घटना को अंजाम देने वाले कई जिहादी आज पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। इनमें 2 पूर्व कांग्रेसी कार्यकर्ता सलीम पानवाला व फारूक बाना भी शामिल है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के मुताबिक सलीम हाजी इब्राहिम पानवाला, शौकत अहमद चरखा उर्फ लालू एवं फारूक बाना को गोधरा मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। यह तीनों अभी भी फरार है। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देकर कम से कम 5 ग्रुप में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। गोधरा नरसंहार में जांच के दौरान पता चला कि 4 अभियुक्त पाकिस्तान में रह रहे हैं। इसमें से एक इब्राहिम दांतिया उर्फ कचुका को 2009 में गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह ट्रेन के रास्ते पाकिस्तान से भारत लौटा था। हालांकि गुजरात पुलिस व एसआईटी उसके खिलाफ कुछ खास सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके कारण विशेष अदालत ने संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। उसी से पता चला कि सलीम हाजी इब्राहिम पानवाला और शौकत अहमद चरखा उर्फ लालू अभी भी पाकिस्तान में रह रहा है, जबकि फारूक बाना का कहीं पता नहीं है। इब्राहिम की गिरफ्तारी की खबर के बाद वह पाकिस्तान के करांची से फरार हो गया और इस वक्त किस देश में है इसका पता न तो गुजरात पुलिस को है और न ही देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो को। इसी वजह से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया जा सका है, जबकि सलीम पनवाला व शौकत चरखा के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। भारत से भागने से पहले इन्हें बड़ी आसानी से दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास से वीजा भी मिल गया था, जो दर्शाता है कि इन्हें भारत से भागने में किस तरह की राजनीतिक मदद मिली थी। कांग्रेसी कार्यकर्ता को फांसी व उम्र कैद की सजा भी मिली और कुछ पाकिस्तान में भी छिपे हैं, लेकिन क्या कभी इस पर मीडिया में चर्चा देखी या सुनी है? गोधरा नरसंहार के बाद घटना स्थल का निरीक्षण करने गई जस्टिस तेतिया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, नगर पालिका का कांग्रेस सदस्य हाजी बिलाल इलाके में बिन लादेन ऑफ गोधरा के नाम से जाना जाता है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह नगर पालिका के व्हीकल कमेटी का चेयरमैन भी है। इसके अलावा इस घटना में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फारूक बाना और गोधरा नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्य अब्दुल रहमान दांतिया की संलिप्तता का भी पता चला है। इन तीनों की मौजूदगी यह दर्शाता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता साबरमती एक्सप्रेस को जलाने में बेहद सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। 59 राम भक्तों को साबरमती एक्सप्रेस में जलाकर मारने की घटना के तत्काल बाद इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने 5 लोगों का नाम प्रकाशित किया था, यह कहकर कि गोधरा कांड में गिरफ्तार ये लोग कांग्रेस के अधिकारी व कार्यकर्ता है। हालांकि इसके बाद कांग्रेस के इशारे पर इंडियन एक्सप्रेस सहित सभी अखबारों व इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संलिप्तता व उनके नाम को पूरी तरह से दबा दिया। 5 मार्च 2002 को इंडियन एक्सप्रेस ने गोधरा नरसंहार में लिप्त जिन कांग्रेसी नेताओं के नाम व उनके पद प्रकाशित गए थे वो हैं: 1. महमूद हुसैन कलोटाह गोधरा नगर पालिका का अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का संयोजक। 2. सलीम अब्दुल गफ्फार शेखा पंचमहल युवा कांग्रेस अध्यक्ष। 3. अब्दुल रहमान अब्दुल माजिद दांतिया कांग्रेस कार्यकर्ता। 4. फारूक बाना जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव। 5. हाजी बिलाला इलाके का प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता। अब विशेष अदालत के फैसल पर गौर फरमाइए। अदालती फैसले में जिन 31 दोषियों को सजा सुनाई गई है उनमें इन 5 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में से 3 के नाम शामिल हैं। मसलन हाजी बिलाल को फांसी की सजा सुनाई गई है, वहीं अब्दुल रहमान दांतिया और फारूक बाना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि महमूद हुसैन कलोटा को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया है। इनके अलावा एक और नाम है जिसे इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित नहीं किया था, वह है सलीम हाजी इब्राहिम पानवाला। भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने 23 जुलाई 2013 को टाइम्स नाउ चैनल पर बहस के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा था, यह साबित हो गया है कि गुजरात के दंगे कांग्रेस ने कराए थे। अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों ने गोधरा में ट्रेन में हिंदुओं को जिंदा जलाया था, उनमें से एक सलीम हाजी पनवाला कांग्रेस पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन नहीं किया, बल्कि वह और उसके बाद सारी मीडिया पूरे मामले पर चुप्पी लगा गई। अगर यह खबर झूठी होती तो अभी तक कांग्रेस उनको मानहानि का नोटिस थमा चुकी होती, लेकिन कांग्रेस पार्टी जानती है कि यदि नोटिस थमाया तो केवल एक सलीम पानवाला नहीं बल्कि गोधरा सहित गुजरात दंगे में शामिल और अदालत से सजा पाए करीब 25 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की सूची बाहर आ जाएगी। कांग्रेसी कार्यकर्ता हाजी बिलाल गोधरा का बिन लादेन था। राम भक्तों को जलाकर मारने में फांसी की सजा पाने वाले हाजी बिलाल को गोधरा का बिन लादेन कहा जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक साबरमती एक्सप्रेस पर हमलावर स्थानीय मुसलमानों की भीड़ हिंदुओं को मारो काटो के साथ साथ लादेन ना दुश्मनों को मारो का नारा भी लगा रही थी। यह लादेन तालिबान का पूर्व सरगना ओसामा बिन लादेन नहीं बल्कि हाजी बिलाल था। जस्टिस तेप्तिया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, हाजी बिलाल गोधरा में नगर पालिका का कांग्रेसी सदस्य और विकल कमेटी का चेयरमैन था। घटना को अंजाम देने से कुछ रात पहले वह गोधरा के फायर स्टेशन का निरीक्षण करने भी गया था। हाजी बिलाल पूर्व जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संयोजक व गोधरा नगर पालिका अध्यक्ष महमूद हुसैन कलोटा का दायां हाथ था। नगर पालिका का चुनाव जीतने से पहले महमूद हुसैन कलोटा कई वर्षों तक कांग्रेस के गोधरा जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का संयोजक रहा था। 43 वर्षीय हाजी बिलाल का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। कलोटा के समर्थन से ही वह नगर पालिका का सदस्य बना था। हाजी बिलाल ने रेलगाड़ी में पॉकेटमारी से अपने आपराधिक करियर की शुरुआत की थी। धीरे धीरे रेलवे स्टेशन व स्टेशन यार्ड पर उसने आपराधिक कब्जा स्थापित कर लिया। पॉकेटमारी व यात्रियों के सामानों की चोरी के गिरोह को चलाने के अलावा जुएबाजी, सट्टेबाजी व पार्सल के माल की चोरी में भी वह लिप्त था। यही नहीं, मुंबई दिल्ली रेलवे लाइन, बड़ौदा, आनंद आदि जाने वाली रेलगाड़ियों में भीख मांगने वाले भिखारियों का उसने बड़ा गिरोह खड़ा कर लिया। अपने बढ़ते कुकृत्यों के कारण वह स्थानीय माफियाओं व राजनीतिज्ञों के संपर्क में आया। स्थानीय माफिया यूसुफ गोधरावाला के जरिए वह अहमदाबाद के डॉन अब्दुल लतीफ के संपर्क में आया और उसका दाया हाथ बन गया। पुलिस के दबाव से घबराकर अब्दुल लतीफ भागकर पाकिस्तान के कराची में जा छुपा था। हाजी बिलाल ने लतीफ के कहने पर उसकी दूसरी पत्नी मेहरुन्निसा और साले अब्दुल रऊफ को नकली पासपोर्ट के सहारे उसके पास कराची भेजने में मदद की थी। 1997 में भारत आने पर लतीफ पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। लतीफ के मरने पर उसने हुसैन दांतिया का साथ पकड़ा। दांतिया अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए जुए का कारोबार संचालित करता था। अपराध में दबदबा स्थापित करने के बाद उसने पावर के लिए राजनीति का रास्ता पकड़ा। कांग्रेस के गोधरा जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संयोजक महमूद हुसैन कलोटा के जरिए पहले वह कांग्रेस का कार्यकर्ता बना और फिर नगर पालिका का सदस्य बन गया। कहते हैं गुजरात ही नहीं दिल्ली के कई बड़े कांग्रेसी नेताओं तक उसने सीधी पहुंच बना ली थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यही हाजी बिलाल गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के यात्रियों पर न केवल हमले को निर्देशित व संचालित कर रहा था बल्कि अग्निशमन गाड़ियों को भी उसने ही स्टेशन के अंदर आने से रोक दिया था जिसके कारण हिंदुओं को जलकर मरने से बचाया नहीं जा सका। गोधरा में हिंदू नरसंहार को अंजाम देने के बाद गाड़ी बदलते हुए पहले मोटरसाइकिल और बाद में टाटा सुमो से वह गुजरात से बाहर निकलकर मध्य प्रदेश के इंदौर और फिर मुंबई भाग निकला। उसकी योजना भागकर पाकिस्तान के कराची पहुंचने की थी। कराची भागने से पहले ही वह गुजरात पुलिस के हत्थे चढ़ गया। विशेष अदालत ने गोधरा नरसंहार में उसके अपराध को बेहद संगीन मानकर उसे फांसी की सजा सुनाई है। हाजी बिलाल उस कांग्रेस का चेहरा है जो खुद को तो धर्मनिरपेक्षता का झंडबदार बताती है, लेकिन जिसकी संलिप्तता भारतीय इतिहास के हर सांप्रदायिक दंगे में परिलक्षित होती रही है। स्थानीय मुसलमानों ने किया था हिंदुओं पर हमला। गोधरा नरसंहार में 59 हिंदू जिंदा जलाकर मारे गए, लेकिन आज देश में उसकी चर्चा करने वाला न कोई मीडिया है, न कोई एनजीओ है और न ही कोई मानवाधिकारवादी संगठन। जबकि गुजरात हाईकोर्ट द्वारा गठित नानावती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि साबरमती एक्सप्रेस जलाने की घटना को पूरी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। कुछ स्थानीय मुसलमानों ने 26 फरवरी की रात को अमन गेस्ट हाउस में इस साजिश को रचा। निकट के पेट्रोल पंप से 140 लीटर पेट्रोल खरीदकर जमा किया गया, जिसे अगले दिन साबरमती एक्सप्रेस को जलाने के लिए उपयोग में लाया गया। 27 फरवरी 2002 की सुबह मुसलमानों की भीड़ ने ट्रेन पर हमला कर दिया। रिपोर्ट कहती है कि भीड़ में 1000 से अधिक मुसलमान शामिल थे और भीड़ नारे लगा रही थी, गाड़ी में आग लगा दो, हिंदुओं को मारो। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि स्टेशन के नजदीक स्थित मस्जिद से लाउडस्पीकर से हिंदुओं को मार डालो कहकर उकसाया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी के बाहर खड़ी मुसलमानों की भीड़ पत्थर बरसा रही थी, जिस कारण इस 6 बोगी से यात्री बाहर नहीं निकल सके और अधिकतम मौतें हुई। गोधरा मामले में सांप्रदायिकता की राह पर चली भारतीय मीडिया। गोधरा के बाद भड़के दंगे में मुसलमान पीड़ितों के परिवार को पिछले 10 सालों से दिखाती आ रही भारतीय मीडिया ने न तो सितंबर 2008 नानावती कमीशन की रिपोर्ट जमा करने की तारीख को और न ही 25 फरवरी 2011 विशेष अदालत के निर्णय की तारीख को ही साबरमती एक्सप्रेस में जलकर मरे हिंदुओं के परिवार के दर्द को आम जनता से बांटा। गुजरात हाईकोर्ट द्वारा गठित नानावती कमीशन व विशेष अदालत द्वारा साजिश की अवधारणा की पुष्टि होने के बावजूद मीडिया कुछ वामपंथी व सांप्रदायिक विचारकों के जरिए इसे झुठलाने में लगी रही। अदालती फैसले वाले दिन देश के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहस का मुद्दा यह नहीं था कि 31 लोगों को सजा हुई, बल्कि यह था कि फैसले से बरी हुए 63 लोगों को 8 सालों तक जेल में बंद रखा गया, जिससे उनका सामाजिक व पारिवारिक जीवन प्रभावित हुआ। मस्जिद के मौलाना उमर जी के परिवार का दर्द आम जनता को बताया और दिखाया जाता रहा कि देखिए इस मौलवी को 8 साल तक जेल में रहना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू जैसे अंग्रेजी अखबारों ने यह कभी नहीं लिखा कि राम भक्त या हिंदू मारे गए, बल्कि यह लिखा कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कारसेवक मारे गए। वहीं जब भी गुजरात दंगों की बात होती है तो मरने वालों के लिए मुसलमान शब्द का जिक्र होता है, जबकि उसमें 250 से अधिक हिंदू भी मरे थे। कभी भी किसी भी मीडिया में गोधरा नरसंहार के शिकार हुए 59 राम भक्तों के परिवार के दुख दर्द को पर्याप्त जगह नहीं मिली। एक उदाहरण से समझाता हूँ। अदालती फैसले के बाद 1 मार्च 2011 को इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, साबरमती एक्सप्रेस में जो कारसेवक जलाए गए उसमें से अधिकांश विश्व हिंदू परिषद के सदस्य थे, जबकि उसी रिपोर्ट में अखबार आगे लिखता है, गोधरा के बाद भड़के दंगे में करीब 1200 लोग मरे जिसमें से अधिकांश मुसलमान थे। इसी से भारतीय मीडिया की सांप्रदायिक सोच का पता चलता है। इसी का नतीजा है कि बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे विदेशी मीडिया ने भारत को मुसलमानों के लिए सबसे असुरक्षित जगह तक बताने में देर नहीं की। हिंदुओं की मौत पर यूपीए सरकार द्वारा पर्दा डालने की कोशिश। गोधरा में ट्रेन जलाए जाने की घटना के करीब ढाई साल बाद कांग्रेस संचालित यूपीए 1 के रेल मंत्री और चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म लालू प्रसाद यादव ने सितंबर 2004 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश उमेश चंद्र बनर्जी को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंप दिया। बनर्जी कमेटी के गठन का मकसद राजनीतिक था और यह साबित करना था कि ट्रेन पर मुसलमानों ने हमला नहीं किया, बल्कि ट्रेन के अंदर से ही आग लगी जिसमें कार सेवक जल मरे। लालू के इस राजनीतिक जांच में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित पूरी यूपीए सरकार की सहमति थी। लालू यादव की धर्मनिरपेक्षता की पोल तत्काल खुल भी गई। उस समय बिहार में चुनाव था और लालू ने अपने माई मुस्लिम यादव गठजोड़ समीकरण को साधने के लिए इस रिपोर्ट का तत्काल राजनीतिक उपयोग भी कर लिया। बनर्जी कमेटी ने जनवरी 2005 में बिहार चुनाव से केवल दो दिन पहले यह रिपोर्ट दे दिया कि साबरमती एक्सप्रेस में बाहर से आग नहीं लगाई गई थी, बल्कि गाड़ी के अंदर से ही आग लगी थी और यह महज एक दुर्घटना भर थी। बनर्जी कमेटी, कांग्रेस चालित यूपीए सरकार व उसके रेल मंत्री लालू यादव का मतलब स्पष्ट था कि साबरमती एक्सप्रेस पर गोधरा के मुसलमानों ने हमला नहीं किया था, बल्कि राम भक्तों ने रेल के डिब्बे में खुद ही आग लगा ली और सामूहिक आत्मदाह कर लिया। हिंदुओं के प्रति नृशंसता दर्शाती बनर्जी कमेटी की रिपोर्ट को साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड में घायल हुए नीलकंठ तुलसीदास भाटिया ने अदालत में चुनौती दी। अक्टूबर 2006 को गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बनर्जी कमेटी पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है। इसका गठन जानबूझकर एक खास मकसद से किया गया प्रतीत होता है। प्राथमिक दृष्टि में इस कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज किया जाता है। साबरमती एक्सप्रेस में हुए हिंदुओं के नरसंहार की खबर जब अखबार में छपी तो उसमें एक किशोरी के बयान ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। 16 साल की छात्रा गायत्री पंचाल उस वक्त 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह अपने परिवार के साथ अयोध्या से घर अहमदाबाद लौट रही थी। इस 6 बोगी में उसकी मां नीता बेन, उसके पिता हर्षद भाई पंचाल, उसकी दो बहनें प्रतीक्षा और छाया सहित 10 लोग उसकी आंखों के सामने जिंदा जलकर मर गए। वह अपने परिवार में अकेली बची थी। उस वक्त के उसके बयान के मुताबिक 27 की सुबह करीब 8 बजे गाड़ी गोधरा स्टेशन से आगे बढ़ी। गाड़ी में सवार सभी कार सेवक राम धुन गा रहे थे। गाड़ी मुश्किल से 500 मीटर गई होगी कि अचानक रुक गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पटरी के दोनों ओर से बड़ी संख्या में लोग हाथ में तलवार गुफ्ती आदि लेकर गाड़ी की ओर भागे आ रहे थे। वे लोग गाड़ी पर पत्थर बरसा रहे थे। गाड़ी के अंदर मौजूद सभी लोग डर गए और डर कर खिड़की दरवाजा बंद करने लगे। बाहर के लोगों की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वे लोग कह रहे थे, मारो काटो, लादे ना दुश्मनों ने, मारो, और भीड़ ने ट्रेन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने खिड़की को तोड़ दिया और बाहर से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई भाग ना सके। उसके बाद उन्होंने गाड़ी के अंदर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा दी। बोगी के अंदर घुसे हमलावर कारसेवकों को मार और लूट रहे थे। कंपार्टमेंट में हर ओर पेट्रोल और आग पसरता जा रहा था। हम लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन वहाँ कौन हमारी मदद को आता। हमने देखा कि कुछ पुलिस वाले कारसेवकों को बचाने के लिए बोगी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ ने उन्हें बाहर ही पकड़ लिया। ट्रेन के डिब्बे में हर ओर धुआं ही धुआं भर गया, जिसके कारण किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमारा दम घुटने लगा था। मैं किसी तरह टूटी हुई खिड़की से कूद गई। बाहर खड़े लोग हमें पकड़ने के लिए दौड़े और डर के मारे हम फिर से जलती हुई ट्रेन की ओर भागे और केबिन तक पहुंचने में सफल रहे। अंदर मैंने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता और बहनों को जिंदा जलते देखा। हम किसी तरह स्टेशन तक पहुंचने में सफल रहे जहां मैं अपनी मौसी से मिली। गाड़ी की बोगी पूरी तरह से जल चुकी थी। भीड़ चिल्ला रही थी। उस भीड़ में न केवल पुरुष थे बल्कि महिलाएं और हमारी उम्र के किशोर भी शामिल थे। हम 18 लोग थे जिसमें से 10 जिंदा जलकर मर गए। गोधरा की घटना के बाद जिस गायत्री का बयान मीडिया ने लिया, उसी गायत्री की मीडिया ने आज तक दोबारा से खबर नहीं ली है। उस गायत्री के लिए कोई तीसा शीतलवाड़, कोई अरुंधति राय, कोई जावेद अख्तर, कोई शबाना आजमी या किसी महेश भट्ट ने कभी कोई आवाज नहीं उठाई है। हाँ, लेकिन हर बार चुनाव के समय गुजरात दंगे के शिकार कुछ परिवारों को बार बार तीसताश बन मजावेद शबाना के बयान की चाशनी में लपेटकर मीडिया दिखाती भी है और छापती भी है। हिंदुओं के नरसंहार के लिए आखिर गोधरा को ही क्यों चुना गया? सवाल उठता है कि मुसलमानों ने हिंदुओं के नरसंहार के लिए गोधरा को ही क्यों चुना? दरअसल गोधरा का पुराना सांप्रदायिक इतिहास रहा है। यहाँ देश विभाजन के समय 1947 में जबरदस्त दंगा भड़का था। उसके बाद से यहाँ 1952, 1959, 1961, 1965, 1967, 1972, 1974, 1980, 1983, 1989, 1990 और 1992 में दंगा भड़क चुका है। यहाँ घांची मुसलमानों की बड़ी तादाद है जो धार्मिक दृष्टि से बेहद कट्टर और जिहादी मानसिकता के हैं। जस्टिस तेप्तिया कमेटी अपनी रिपोर्ट में लिखती है, गोधरा में मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर देश में उनकी वृद्धि दर से कहीं अधिक है। आंकड़े दर्शाते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का जनसंख्या का अनुपात 48:52 है। यहाँ के मुसलमान आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, जिसके कारण यहाँ के हर दूसरे तीसरे घर से कोई न कोई व्यक्ति अरब, अमीरात और अन्य मुस्लिम देशों में कमाने के लिए जाता है और जब वहाँ से लौटता है तो उसकी मजहबी कट्टरता की खुराक में वृद्धि स्पष्ट दिखती है। आतंकवाद नहीं, जिहाद की परिणति थी गोधरा। गोधरा की घटना ने इस देश के पूरे मानस को ही बदल दिया। आजादी मिलने के समय से ही बार बार सांप्रदायिकता और आतंकवाद की मार झेलता यह देश पहली बार इस्लामी जिहाद की आग में झुलसा था। गोधरा का हमलावर कोई प्रशिक्षित आतंकवादी नहीं था। उसने ट्रेन को बम धमाके से नहीं उड़ाया था, न ही वह हाथ में AK-47 लेकर ट्रेन में घुसा और लोगों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार की। यह सांप्रदायिक घटना भी नहीं थी जिसमें आवेश या गुस्से में आकर पड़ोसी ही पड़ोसी पर तलवार, चाकू, सरिया, बंदूक, जलती मशाल या ऐसे ही किसी हथियार को लेकर टूट पड़ता है। सांप्रदायिकता में दोनों समुदायों का नुकसान तय है। हिंदुओं व काफिरों को मारने का नारा दिया जा रहा था। गोधरा की घटना विशुद्ध रूप से जिहाद था जिसमें सोच समझकर साजिश रचकर हिंदुओं और काफिरों को मार डालो का नारा बुलंद किया जा रहा था। इस जिहाद में गोधरा के केवल मुसलमान पुरुष ही नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाएं, बच्चे और किशोर भी शामिल थे। हिंदुस्तान में पहली बार खुले तौर पर किसी मस्जिद से मार डालो का अजान दिया जा रहा था। पहली बार इसमें एक दुकानदार से लेकर सरकारी अधिकारी तक और नगर पार्षद से लेकर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता व आम मुसलमान तक शामिल थे। महिलाएं और छोटे बच्चे तक शामिल थे इस जिहाद में। गोधरा नरसंहार में मस्जिद का एक बुजुर्ग मौलवी से लेकर नगर पार्षद, गेस्ट हाउस का मालिक, नेता, वेंडर, किशोर सभी को अभियुक्त बनाया गया। मतलब गोधरा का हर तबका इस नरसंहार में शामिल था। सबसे भयानक बात तो नानावती कमीशन की रिपोर्ट में आई है। कमीशन ने अग्निशमन अधिकारियों का बयान दर्ज किया है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के मुताबिक जब हमें सूचना मिली कि साबरमती एक्सप्रेस जलाई गई है तो हम तुरंत आग पर काबू पाने के लिए चल पड़े, लेकिन सिगलन फालिया के पास बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं और बच्चे दमकल गाड़ी के सामने लेट गए। वो चिल्ला रहे थे, इनको तब तक मत जाने। दो जब तक कि ट्रेन पूरी तरह जल न जाए। यानी महिलाएं और बच्चे भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर जिहाद का नारा बुलंद कर रहे थे। सेना का अधिकारी तक जिहादी मुसलमान बन गया। थाना जस्टिस नानावती कमीशन ने इसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के बर्खास्त अधिकारी नानुमिया का जिक्र किया है, जो दंगाई मुसलमानों की भीड़ को उकसा रहा था। मतलब सेना का अधिकारी भी जिहादी हो गया था। सरकारी अधिकारियों के लिए भी यह जिहाद ही था। गोधरा का असिस्टेंट कलेक्टर पूर्वी उप्र का मूल निवासी एक युवा मुसलमान था। 27 फरवरी 2002 यानी घटना वाले दिन से दो दिन पहले वह छुट्टी पर चला गया था और मार्च महीने के मध्य तक वापस ड्यूटी पर नहीं लौटा, जबकि उसका जिला सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा था। मतलब जिला के एक वरिष्ठ मुस्लिम अधिकारी को दो दिन पहले से पता था कि साबरमती एक्सप्रेस जलाया जाना है। यानी इस इस्लामी जिहाद में एक उच्च स्तर का पढ़ा लिखा सरकारी अधिकारी भी शामिल था। दूसरा सरकारी अधिकारी एक सैयद मुसलमान रेलवे कर्मचारी था, जिसने दूसरी बार आउट ऑफ सिग्नल पर ट्रेन को रोका। चेन खींचने के बाद गाड़ी थोड़ी आगे खिसकी, लेकिन उस पॉइंटमैन ने उसे दोबारा रोक दिया। मतलब वह भी इस जिहाद का हिस्सा था। स्थानीय मुसलमानों की पूरी सहमति थी इस जिहाद में। गोधरा व उसके बाद भड़के दंगे का जायजा लेने पहुंची जस्टिस तेप्तिया कमेटी ने गोधरा की घटना का जो समाजशास्त्रीय विवेचन किया है, वह दर्शाता है कि यह कोई आम सांप्रदायिक या आतंकी हमला नहीं, बल्कि इसमें गोधरा का अधिकांश मुसलमान शामिल था या उसे इसकी पूरी जानकारी थी। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन में सवार सभी स्थानीय मुसलमान यात्री गोधरा स्टेशन से पहले दाहोद रेलवे स्टेशन पर ही उतर गए थे। जब गाड़ी गोधरा में पहुंची तो उसमें एक भी मुसलमान यात्री सवार नहीं था, जो यह दर्शाता है कि स्थानीय मुसलमानों को इस पूरी घटना की जानकारी पहले से ही थी और उन्हें इस गाड़ी में सफर न करने या गोधरा से पहले उतर जाने की नसीहत दे दी गई थी। दूसरी बात, साबरमती एक्सप्रेस को 1000 से 2000 मुसलमानों की भीड़ ने घेर लिया था। सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि धुंधु कर जलती इस 6 बोगी से जान बचाने के लिए भागने वाले एक भी व्यक्ति को बाहर खड़ी मुसलमानों की भीड़ बाहर नहीं आने दे रही थी। उन्हें जलकर मरने के लिए अंदर धकेल दिया जा रहा था। उन पर पेट्रोल फेंका जा रहा था। अगले दिन केवल 35 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई, जो यह दर्शाता है कि दोषियों को बचाने के मामले में स्थानीय मुसलमान सामूहिक रूप से सहमत थे।